होता है क्या?
ऐसा प्रश्न क्यों आया आपको? हाँ, श्रेणिक राजा के कारण
हो गया तो सभी दृष्टि
नरक में जाने वाला सम्यक दृष्टि कौन सा सम्यक दृष्टि होता है?
पूर्व में जो जिसने बात की है,
तीन सम्यक्तों में से कौन सा सम्यक दृष्टि नरक में जा सकता है सम्यक्त के साथ? जाने वाला कौन सा सम्यक दृष्टि होगा? क्षायिक वाला ही जा सकता है, क्षोभसम सम्यक्तों के साथ कोई नरक में जा ही नहीं सकता, ऐसा नियम है। पहले नरकायु बांधी है, बाद में सम्यक हुआ, बाद में क्षायिक सम्यक्त हुआ, तो क्षायिक वाला ही सम्यक तो लेकर जा सकता है, अन्यथा वो सम्यक तो के साथ नहीं जा सकता, छूट जाएगा। वैसा ही तिर्यंच होने मनुष्य में से जो सम्यक तो के साथ तिर्यंच होगा वो भी क्षायिक होना आवश्यक है। मनुष्य में मनुष्य जमे जाने वाला वो भी क्षायिक होना आवश्यक है। जरा घूमते का आवाज इस होते लाम ट्यू लाम ट्यूला हरकत नहीं वाला। हाँ, अतः वो कसम आता था। स्वरूप देखा, सर्वज्ञ की सिद्धि भी देखी, और सर्वज्ञ के बारे में जो कोई भ्रांतियां चलती है उसका भी थोड़ा यहां विवेचन हो गया। हमारा तो विषय कारण कार्य संबंधी है, कार्य किसे कहते हैं ये पहले में पहले हम नक्की करेंगे। कार्य किसे कहते हैं, यहां से बोलेगा कोई कार्य किसे कहना? हाँ बोलो। हाँ, वस्तु के यानी द्रव्य के परिणमन को हम कार्य कहते हैं। द्रव्य में अनंत गुण है तो प्रत्येक गुण प्रति समय स्वयं परिणमित होता है। ये सारी बातें आप सिद्धांत प्रवेशिका में भी सीखे होंगे और सीखेंगे भी। तो वहाँ जो वस्तुत्व गुण है द्रव्य में वो क्या करता है, उसके कारण क्या होता है? अपने अपने प्रयोजनभूत क्रिया यानी कार्य होता है, यानी द्रव्य में उसका जो कोई स्वतः का अपना अपना कार्य है वो होता रहता है, यानी पर्याय स्वयं होती रहती है। ऐसा द्रव्य ही स्वयं उसकी कैपेसिटी है, उसमें ऐसी योग्यता है कि स्वयं अपना अपना कार्य खुद करे, कोई अन्य आके उसका कार्य कर जाए तो इसका कार्य हो, ऐसी परतंत्रता कहीं है ही नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, उसका प्रत्येक गुण स्वतंत्र है और प्रत्येक पर्याय भी स्वतंत्र है कि जो स्वयं अपने समय पर स्वयं उत्पन्न होती है। पर्याय की भी स्वतंत्रता है, क्योंकि हमने देखा पर्याय भी सत है, वो एक समय के लिए टिकती है, परंतु जो उसका अपना जन्मक्षण है, कल जन्मक्षण की बात आई थी ना, कौन से ग्रंथ में लिखा है, प्रवचन सार में लिखा है, पर्याय का अपना जन्मक्षण होता है, यानी वो स्वयं द्रव्य के जो अनादि अनंत काल है उसका जो प्रवाह है उसमें उसकी निश्चित उसका स्थान है और उसी स्थान पर उसका उत्पाद होगा, उसी एक समय के लिए वो रहेगी। वो पर्याय द्रव्य के भूतकाल में भी नहीं पाई जाएगी और भविष्य काल में भी नहीं पाई जाएगी। वैसी की वैसी पर्याय अन्य समय में हो सकती है, पर वही पर्याय नहीं होगी, क्योंकि पर्याय रहते ही एक समय के लिए। हम जब पर्याय का स्वरूप निश्चित करते हैं तो उस संबंधी हमारी जो कोई मान्यता है, गलत भ्रांतियां चलती है, वो मिट जाती है। पर्याय को ही कार्य कहते हैं, पर्याय को ही विशेष कहते हैं, कारण की अपेक्षा पर्याय को कार्य कहेंगे। जब हम गुण को सामान्य कहेंगे या द्रव्य को सामान्य कहेंगे तो पर्याय को क्या कहेंगे, विशेष कहेंगे। ऐसे नाम आते हैं ना उसके, कारण, कार्य, गुण, पर्याय, सामान्य और विशेष। तो जो सामान्य होता है वो कभी भी विशेष के बिना नहीं होता। क्या कहा, हाँ, सामान्य विशेष के बिना नहीं होता और विशेष भी सामान्य के बिना नहीं होता। तो विशेष का क्षेत्र बड़ा है कि सामान्य का, मेरा प्रश्न क्या है सुन लो फिर, सामान्य का क्षेत्र बड़ा है कि विशेष का, बोलो। हाँ, एक ही क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में जितना बड़ा सामान्य है, जितना बड़ा गुण है, उतना ही बड़ा उसकी उतनी पर्याय होती है। हमने देखी थी कल बहुत विस्तार से और उदाहरण से हमने इसको समझा था कि जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है, जो द्रव्य का द्रव्य है वही गुण का द्रव्य है, वही पर्याय का द्रव्य है। जो हमने देखा ना, द्रव्य का जो क्षेत्र है वही क्षेत्र गुण का है और वही और उतना ही क्षेत्र पर्याय का भी है। ऐसा नहीं कि द्रव्य बड़ा है और उसकी पर्याय छोटी है, ऐसा कभी नहीं होगा। जितना बड़ा द्रव्य है उतना ही बड़ा उसका प्रत्येक गुण है और उतनी ही बड़ी प्रत्येक गुण की पर्याय है, क्योंकि हम द्रव्य उसी को कहते हैं गुण पर्यायवत द्रव्यम। ये हम बार बार क्यों दोहराते हैं, क्योंकि द्रव्य का स्वरूप अगर हमें सही ख्याल में नहीं आता है तो ये समय सार, प्रवचन सार आदि ग्रंथों में क्या लिखना चाहते हैं, आचार्यों की क्या अपेक्षा है, ये हमारे ख्याल में नहीं आते। हाँ बोलिए, आपका प्रश्न है। इसीलिए मैंने कहा ना, आपका प्रश्न भाई साहब का ऐसा है कि आप तो कहते हैं कि पर्याय द्रव्य के पूरे भाग में रहती है, वो उसके एक समय के लिए तादात में रहती है, क्यों, कौन सा संबंध है पर्याय का और द्रव्य का, बोलो। अभी सीख क्या है ना, हाँ हाँ, नित्य अनित्य तादात्म्य, तादात्म्य ने एकमेक, एक समय के लिए वो एकमेक है, कौन सी, स्वभाव पर्याय के विभाव पर्याय, स्वभाव पर्याय एकमेक होगी कि विभाव पर्याय एकमेक होगी, दोनों होगी। तो राग का भी जीव द्रव्य के साथ तादात्म्य संबंध होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एक समय के लिए नहीं होगा ना, कह रहे हो आप, प्रवचन सार निकाल के पढ़ना, जिस समय जीव क्रोध रूप परिणमित होता है तो जीव को क्रोध कहा है, क्रोधी भी नहीं कहा, राग कहा है। देखो, हमें पहले में पहले वस्तु का स्वरूप निश्चित करना पड़ेगा और फिर उसके बाद अपेक्षावश कोई बात हम कह सकते हैं। क्या कहा? जैसे किसी एक सेठ को पुत्र है और वो कैसा है, सभी कुलक्षणों से युक्त है, तो उसने पेपर में लिख दिया ये मेरा पुत्र फला फला आज से मेरा नहीं है, उसके साथ जो व्यवहार रखेगा मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। क्या लिखा उसने? ये जो मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र के तो मेरा नहीं है। प्रवचन सार में तो जैसा वस्तु का स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप और ज्ञेयों का स्वरूप, वो जैसा है वैसा बताया है। द्रव्य स्वयं वो विभाव रूप परिणमित होता है, तो उसको भी वो विभाव पर्याय उसकी ही है और उस एक समय के लिए उसके लिए उसके साथ वो तादात्म्य है राग की पर्याय के साथ भी। फिर भी समय सार में प्रयोजन क्या है हमारा? समय सार की विषय वस्तु क्या है? शुद्ध, जिसको हम दृष्टि का विषय कहते हैं। दृष्टि का विषय क्या है? दृष्टि किसे कहते हैं? आंखों से देखने को दृष्टि कहते हैं। ये श्रद्धा क्या होती है हम नहीं समझते, बोलो। आपने जो बताया हमारा उसमें विश्वास है, इसको श्रद्धा नहीं कहते। ये श्रद्धा का विषय क्या होता है? ज्ञान का विषय तो स्व पर सब होता है, श्रद्धा का विषय क्या होता है? हाँ बोलो, समय सार है ना आपके, सीख रहे हो ना। श्रद्धा का विषय क्या है बोलो? उसके लिए मैंने पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा। श्रद्धा किसको विषय करती है? दृष्टि का विषय क्या होता है? मैं किसमें स्थापित करना, वो किसमें किया, वो आप त्रिकाली का नाम ले लो। श्रद्धा क्या, उसको क्या दिखता है? मैं कौन हूं इसमें श्रद्धा, उसका विषय क्या है? मैं पना किसमें स्थापित करना, इसको कहेंगे दृष्टि का विषय। और ज्ञान का विषय स्व पर सब, तो क्या सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का विषय अलग है क्या एक है? बोलो, बिल्कुल अलग है। सम्यक दर्शन है वो स्व को स्वीकार करता है, उसका विषय है स्व, और स्व किस में स्थापित करता है उसको हम कहेंगे दृष्टि का विषय, श्रद्धा का विषय। और ज्ञान का विषय वही सम्यक ज्ञान है, वो स्व को भी जानता है पर को भी जानता है। ध्यान में देखो, जरा विचार करना इस पर। समय सार में जो सारी विषय वस्तु है वो तो अपने आत्मा के अनुभव के लिए, जो कार्यकारी जिस विचारधारा से हमें आत्मा का अनुभव हो जाए, तो वहां राग को भी भिन्न करने के लिए भिन्न हो जाता है क्या? कि जीव के प्रदेशों में उस पर्याय में से निकल जाता है? राग के होते हुए सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? होता है ना, चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है, तो राग का तो सद्भाव है वहां पर। मुनियों के भी राग का सद्भाव है, तो सम्यक तो होने में, राग तो होने में तो कोई बाधा नहीं। हमें तो उसको अपने से भिन्न पहचानना है, भेद ज्ञान करना है ना। सात तत्वों में हम स्व तत्व को पहचाने तो अपने से सारे अजीव तत्वों को भिन्न हमने जान लिया। करना नहीं है कुछ, है उसको पहचानना है और स्वीकारना है। श्रद्धा में तो स्वीकार होता है, ज्ञान और श्रद्धा क्या करते? ज्ञान ने भी उसको पर जाना, तो पर जाना शरीर को, पर जाना तो शरीर को बाहर निकाल देना कि नहीं निकाल देना? क्यों? शरीर पर है और हमारा घर भी पर वस्तु है, पैसा भी पर वस्तु है, सबको निकाल बाहर करना कि नहीं करना? अरे जहां है वहां है, वो हमारी वस्तु नहीं है, हम उस रूप नहीं है। शरीर के होते होते तो अरिहंत अवस्था प्राप्त होती, तो काले जीवों को अरिहंत अवस्था होगी कि गोरे लोगों को होगी? बोलो क्यों? कौन सा संस्थान होगा तो अरिहंत अवस्था होगी? कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, हाँ बोलो कौन सा होना चाहिए? वज्रऋषभ संस्थान है कि सहनन है? हम संस्थान पूछ रहे हैं, तो ये कंडीशन है समय चतुरस्र संस्थान होगा तो ही अरिहंत अवस्था होगी? नहीं होता। छह संस्थानों में अरिहंत अवस्था प्राप्त हो सकती, तीर्थंकरों को समय चतुरस्र संस्थान होगा, परंतु कोई वर्ण है, सुस्वर है या दुस्वर है, वो अरिहंत अवस्था प्राप्त करने में बाधक नहीं है। निकाल के देखना इन कर्मों का उदय कहाँ तक चलता है, 13वें गुणस्थान तक चलता है। हाँ, हमें अरिहंतों का स्वरूप निश्चित करना पड़ेगा। ये सहनन की बात आवश्यक है, वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले को ही अरिहंत अवस्था होती है, परंतु संस्थान में कोई बाधा नहीं है। कोई ठिंगना है, कोई ऊंचा है, कोई काला है, कोई कलूटा है, ऐसे उसके अरिहंत बनने में कोई बाधा नहीं है। तो ये जो भेद ज्ञान करना है, आपका प्रश्न इनका ऐसा था कि समय सार में राग के तो प्रदेश भिन्न कह दिए। क्यों प्रदेश भिन्न कह रहे हैं? अरे मेरे उससे सर्वथा संबंध नहीं है ऐसा कहना है, तो हमने उसका स्वद्रव्य स्वशक्ति स्वकाल स्वभाव सब उसको भिन्न कर दिया। ख्याल में आती बात? समय सार में जो बातें लिखी है, प्रवचन में प्रवचन सार में जो बातें लिखी है, प्रवचन सार में तो ज्ञान की मुख्यता से, ज्ञान की प्रधानता से बातें, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी बताई है। और समय सार में प्रयोजनवश, क्या प्रयोजन है हमारा? आत्मा की अनुभूति करनी है। यदि हम वो ज्ञान का विषय नहीं जानेंगे और डायरेक्ट सम्यक दर्शन करना चाहते हैं तो तीन काल में नहीं होगा। ज्ञान सही हुए बिना मिथ्या ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन हो जाए? ख्याल में आता है? इसलिए द्रव्य गुण और पर्याय का सही स्वरूप बिल्कुल निश्चित करना पड़ेगा। जिस समय तत्व निर्णय हो जाए, तत्व निर्णय नहीं, द्रव्य गुण पर्याय का तत्व उसी संबंधी तत्व निर्णय, देवगुरु शास्त्र के स्वरूप संबंधी तत्व निर्णय। जैसे हम हमारी चाबी खो गई ताले की, तो हम चाबी वाले के पास जाते हैं, वो क्या करता है? घिसता रहता है उसको, कब तक? वो चाबी डाले और ताला खुल जाए। वैसे ही हम तत्वों का अभ्यास करते हैं तब तक तत्व विचार और तत्व निर्णय चलता रहेगा। जिस समय तत्व निर्णय होता है उसी समय समय दर्शन की प्राप्ति होती है। हमें तो ऐसा लगता है अभी हम कितना पढ़े तो सम्यदर्शन हो जाएगा, लगता है ना? कितना पढ़ने से नहीं होता है, किस बिल्कुल एग्जैक्ट उसका तत्व निर्णय सही हो जाने से ही सम्यदर्शन की प्राप्ति होती। तो ज्ञान सही, ये ज्ञान हम आगम के द्वारा जान रहे हैं। जैसा आगम में बताया है वैसा सही वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप यानी अन्य वस्तुओं का भी और अपना भी, जब हम सही पहचानेंगे, सही जानेंगे, सही स्वीकार करेंगे और उसमें मैं किसमें स्थापित करना है, तो तब हम कहेंगे वो समय सार में जो विषय वस्तु अभेद सामान्य जिसको कहा है, त्रिकाली जिसको कहा है, परम पारिणामिक भाव जिसको कहा है, फिर उसकी बात हम वहां करेंगे। तो हमें दोनों ही ओर से बराबर समझना चाहिए। ज्ञान की अपेक्षा सर्वांगीण उसका ज्ञान करना चाहिए, फिर श्रद्धा की अपेक्षा स्व किसमें स्थापित करना है उसको स्वीकारना चाहिए। ख्याल में आए दोनों में अंतर? अभी हम जरा आगे बढ़ेंगे। आपका विषय जो है ना उसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। हमने सर्वज्ञ के बारे में और भी एक प्रश्न कल उस वो भ्रांतियों में हमने निकाला था कि कोई ऐसा समझते हैं कि व्यवहार से जानते, निश्चय से जानते ही नहीं है लोकालोक को। तो इसमें ये कर्णान योग के ग्रंथों में ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका है, ढूंढारी भाषा की मूल ओरिजिनल 513 और 14 पृष्ठ पर ये ज्ञान मार्गणा में ये विषय लिया है। वहाँ पर वहाँ तो उन्होंने बहुत सारे कोट किए हैं श्लोक भी, उसमें लिखा है दोउ नयनी करी, दोउ यानी दोनों, नयनी करी यानी नयों के द्वारा, कौन से दो नय? निश्चय नय और व्यवहार नय, दोनों नयों के द्वारा लोकालोक संबंधी त्रिकालवर्ती सर्वज्ञयनिको, ज्ञयनिको यानी ज्ञेयों को वेत्ति यानी जानता है, उसको क्या कहेंगे? वेदक, जीव को वेदक कहा है। आगे भी लिखते हैं दोउ नयनी करी यानी दोनों नयों के द्वारा क्षेत्र जो लोकालोक उसको जानना थी यानी जानता है, इसलिए उसको क्षेत्रज्ञ कहते। किसको? जीव को। ये जीव के जो अलग अलग नाम है, ये जो भ्रांति चलती है ना पर को जानता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां भी अपेक्षावश वह अपने ही ज्ञान पर्याय को जानता है, परंतु वो ज्ञान पर्याय कैसी है? तो हाँ, वो ज्ञान पर्याय जो है वो स्वपर प्रकाशक है। वो ज्ञान पर्याय अपनी स्वयं की योग्यता से स्व और पर को जानती हुई प्रकट होती है और उस ज्ञान पर्याय को ही हम जानते हैं। उस अपेक्षा से कहेंगे स्व को जानता है, तो दोनों ही अपेक्षा बराबर ख्याल में लेनी चाहिए। ये हिंदी जो है ना अनुवाद, आपके गत वर्ष आपको जो दिया था उसमें भी 502 पृष्ठ पर यही बात लिखी है, हिंदी में लिखी है। दोनों नयों से लोकालोक संबंधी त्रिकालवर्ती सर्व गेयों को वेत्ति अर्थात जानता है, इसलिए जीव को वेदक कहा। और नीचे लिखते हैं उस क्षेत्र ने जो कहा, हाँ, दोनों नयों से क्षेत्र जो लोकालोक उसको जानाती अर्थात जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो ये इसके संबंध में हमारी कोई भ्रांति है, कहीं अपेक्षावश एक ही आचार्य अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बात करते हैं तो कहीं विरोध होता ही नहीं। विरोध हमारे समझने में हो सकता है, हम उनकी अपेक्षा नहीं समझे तो उसमें ये बातें हो सकती है। निश्चय ने और व्यवहार ने, अभी हमने जो अभावों की चर्चा शुरू की थी उसमें अभी तक हमने दो अभाव देखे थे। कोई कहेगा कौन से दो अभाव? बोलो। हाँ, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। मुझे प्राग भाव की परिभाषा चाहिए। हाँ बोलो। किसके? मेरे के, आपके? हाँ, किसी द्रव्य के, 14 द्रव्यों में से किसी द्रव्य के वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य के पूर्व पर्याय में, भूतकाल की पर्याय में जो अभाव है उसको क्या कहेंगे? प्राग भाव। और प्रध्वंसा भाव किसको कहेंगे? बोलो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने भूल सुधार ली। किसी द्रव्य की वर्तमान पर्याय का, ये का जो प्रत्यय है वो वर्तमान पर्याय के लिए लगाना है। भविष्यकालीन पर्याय में जो अभाव है उसको हम क्या कहेंगे? प्रध्वंसा भाव कहेंगे। ख्याल में आई बात? इसके लिए हमने बहुत सारे उदाहरण भी देखे थे। और ये का प्रत्यय क्यों लगाना इसकी भी चर्चा हुई थी। हम थोड़ा आगे देखते हैं, 39 पृष्ठ 39 आपकी जो पुस्तक है हाथ में, कारण कार्य रहस्य, उसमें 39 पृष्ठ पर हम थोड़ी चर्चा पुस्तक के आधार से करेंगे। देखो शुरू से ऊपर से, भूतकाल में जो बातें बन चुकी उसमें तो हम कुछ बदलाव ला नहीं सकते, और भविष्य अभी आया नहीं है तो उसमें हम क्या करना है, हमें क्या करना है। इसलिए भूतकाल और भविष्यकाल की पर्यायों पर से दृष्टि हटाकर इस वर्तमान पर्याय का लक्ष्य त्रिकाल एक रूप रहने वाले अपने ध्रुव स्वभाव पर एकाग्र करने से क्या करना चाहते हैं? हम क्या कार्य चाहते हैं? तो अपने आत्मा का अनुभव चाहते हैं, अपनी आत्मा में ही लीन रहना चाहते हैं, सम्यक दर्शन सहित हम स्थिरता चाहते हैं। तो उसके लिए उपाय क्या है? भूतकाल में हमने बहुत पाप किया तो अभी रोने से कुछ होगा कि नहीं होगा? अब उसका लक्ष्य छोड़ दो। भविष्यकाल में हम ऐसा करेंगे, कल से स्वाध्याय करेंगे, कल से करने की बात नहीं है, वर्तमान की बात करो, तो उसको भी हम उसका भी लक्ष्य छोड़ देंगे। तो क्या करना है? वर्तमान पर्याय जो है, कौन सी वर्तमान जो अपने ज्ञान की पर्याय है वो कहाँ लगानी है? तो कहते उसका लक्ष्य त्रिकाल एक रूप रहने वाले। त्रिकाल एक रूप रहने वाले का अर्थ क्या है? देखो द्रव्य कैसा है? सत है। और उसका लक्षण हमने क्या कहा था सत का? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो हर समय नई नई पर्याय का उत्पाद होता है, उसी समय पूर्व पूर्व की पर्याय का व्यय होता रहता है, ये उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय चलता रहता है। तो उसका लक्ष्य करेंगे तो क्या होगा? ये नहीं, 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 जैसे कि आप टीवी के सामने बैठते हैं और हाथ में रिमोट है, क्या करते हैं? शांति से एकाध कोई सीरियल देखते हैं क्या? क्या होता रहता है? अरे घुमाओ उसको, घुमाओ उसको, घुमाओ उसको। लक्ष्य कैसा होता है? इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर चलता रहता है ना। ऐसे ही पर्याय पर दृष्टि करने से क्या होगा? अरे अपना उपयोग इधर से उधर है, ये पर्याय अच्छी है इसको रोक लो, ज्यादा रहनी चाहिए, ये पर्याय नहीं अच्छी इसको निकालो जल्दी, अपनी और पर की। तो उसी का हम, उसमें भी राग द्वेष चलते रहेंगे। तो यहाँ कहते कि त्रिकाल एक रूप रहने वाला ऐसा क्या है, तो अपना ध्रुव स्वभाव जिसको हम द्रव्यांश कहते हैं, कायम रहने वाला एक सदृश भाव, परम पारिणामिक भाव जिसको कहेंगे, ऐसे अपने ध्रुव स्वभाव पर एकाग्र करने से, वही मैं हूँ और उसी में एकाग्र होने से, उसी को जानते रहने से, उसमें अभेद एकाकार होने से क्या होता है, आत्मानुभूति प्रकट होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। ये आत्मानुभूति हुई, सम्य दर्शन हुआ, ये कैसे जानेंगे? हाँ हाँ बोलो। आनंद की प्राप्ति यानी आनंद की अनुभूति होगी, तो आनंद की अनुभूति ये कौन से गुण की पर्याय है? हाँ सुख गुण की अनुभूति में पूछ रही हूँ, चारित्र गुण की। चारित्र गुण की पर्याय क्या हुई? वीतरागता हुई। आपको पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आपको ये दुख की अनुभूति हो रही है, किसके द्वारा जाना आपने? हाँ तो अनुभूति कौन से गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की पर्याय, ख्याल में है ना? सुख हुआ परंतु सुख की अनुभूति किसकी हुई? अनुभूति अर्थ क्या है उसका? अनुभूति यानी वो ज्ञान की पर्याय है। तो हमें सम्यक दर्शन हुआ ऐसा हम जब कहते हैं अनुभूति के द्वारा, अभी वो विषयांतर होता है, परंतु क्या वह दर्शन गुण की पर्याय है, क्या ज्ञान गुण की पर्याय है? जब हमने जान लिया हमको आत्मा की अनुभूति हुई, दर्शन गुण के पर्याय के द्वारा जाना कि ज्ञान गुण के पर्याय के द्वारा जाना? ज्ञान गुण के। तो मालूम है इसको पंचाध्यायी में क्या कहा है? पंचाध्यायी पढ़िए किसी ने, ये जो सम्यक दर्शन हुआ और हमने आत्मा की अनुभूति के द्वारा जाना, ये आत्मानुभूति, उसको सम्यक दर्शन का अनात्मभूत लक्षण कहा। क्या कहा? ये एक ऐसा भूत होता है, हाँ जैसे हमने कहा ये चश्मे वाले हैं और वो पीले साड़ी वाले हैं और वो सफेद टोपी वाले हैं, तो ये टोपी चश्मा दंड ये क्या हुआ? अनात्मभूत है। वैसे यहाँ आत्मा की अनुभूति हुई, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति हुई और हमने जाना कि हमें सम्यक दर्शन हुआ, तो हमने ये कैसा लक्षण है? अनात्मभूत लक्षण है। क्यों? ज्ञान गुण की पर्याय के द्वारा हमने श्रद्धा गुण की पर्याय को जान लिया। नहीं समझ में आया? आत्मा की अनुभूति हुई, उसी समय में सम्यक दर्शन भी हुआ, उसी समय में सम्यक चारित्र भी हुआ, उसी समय में अनंत गुणांश सम्यक तो प्रकट हुआ। तो सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ अपने को, कैसे जाना हमने? ज्ञान में जो अनुभूति हुई, अतीन्द्रिय आनंद का जो वेदन हुआ, उसके द्वारा हमें निश्चय हुआ कि हमें सम्यक दर्शन हुआ। तो श्रद्धा गुण की एक पर्याय को जानता नहीं है ये क्षोभ ज्ञानी, ये श्रद्धा गुण में क्या परिवर्तन हुआ वो कुछ नहीं समझता उसको। उसको कैसे ख्याल में आया? आत्मा की अनुभूति के द्वारा उसको समझ में आया कि मुझे आत्मा की अनुभूति यानी मुझे सम्यक दर्शन हुआ है। लोग क्या कहते हैं? हमारी पूरी श्रद्धा है, जो भगवान कहते ना, हमारा पूरा विश्वास हुआ है और ये यही सम्यक दर्शन है। आत्मा के अनुभव से कुछ नहीं लेना देना, शुद्ध उपयोग होता है चौथे गुण स्थान में, ये कुछ नहीं, बस उसको देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा होती है और आत्मा की श्रद्धा होती है, यही उसका सम्यक दर्शन है। परंतु उस श्रद्धा को श्रद्धा नहीं कहेंगे। सम्यक श्रद्धा कब कहेंगे? जब आत्मानुभूति के द्वारा अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होगा तब उसको हम कहेंगे इसको सम्यक दर्शन हुआ। आत्मभूत अनात्मभूत सुना है कि नहीं सुना आपने? हाँ तो ये बात समझ में आई क्या नहीं आई, कि इधर से चली गई? हाँ ख्याल में आता? अन्य गुण के द्वारा, अन्य गुण की पर्याय के द्वारा हमने श्रद्धा गुण के पर्याय का निर्णय किया है। सही निर्णय है, निर्णय गलत नहीं है, क्योंकि जिस समय आत्मानुभूति हुई है उसी समय सम्यक दर्शन हुआ है, उसी समय सम्यक चारित्र हुआ है, परंतु वो हमने जाना कैसे? ज्ञान गुण की परिणति के द्वारा। हमने स्कूल में आपको, शायद आप स्कूल में पढ़े थे, हमारे स्कूल में तो हमको बताया था आपको छाता होता है ना, छाता, छतरी, उसका आत्मचरित्र लिखना है। आत्मचरित्र शब्द सुना है आपने? तो आत्मचरित्र का अर्थ क्या होता है हिंदी में? क्या कहते हैं? आत्मचरित्र ही लिखते हैं ना, आत्मकथन। अच्छा, आत्मकथा, आत्मकथा यानी आत्मा की कथा। छतरी में आत्मा होता है, आत्म यानी स्व, अनात्म यानी पर, जो स्व नहीं है, ख्याल में है ना। तो आत्म लक्षण, आत्मभूत लक्षण, वस्तु के अंदर जो गर्भित है उसका जो लक्षण कहेंगे उसको हम आत्मभूत कहेंगे। और अनात्मभूत, जैसे हमने अभी दृष्टांत दिया था कि ये जो है वो लकड़ी लेके जाते, वो लकड़ी वाले हैं, ये क्या है, टोपी वाले हैं, ये क्या है, चश्मे वाले हैं। तो चश्मा तो उसका अंगभूत नहीं है, वो तो उसके, उससे भिन्न है। तो भिन्न वस्तु के द्वारा अन्य वस्तु का ज्ञान कराना, उसका पहचानना, उसको भी लक्षण तो कहेंगे, क्योंकि वो पहचानने का चिन्ह है। फिर भी वो कैसा है? अनात्मभूत लक्षण। अभी हम अपने मूल विषय पर आते हैं, जितना समझो उतना समझो। हाँ, कहीं तो यहाँ रजिस्टर, कहीं कहीं बातें नहीं समझ में आती, फिर भी सुनना, कहीं कहीं जाके फिर वो क्लिक हो जाती है अपने आप। हाँ, उसका एडिटिंग चलता है अपने दिमाग में। देखो, अभी तक हमने कितने दो अभावों की चर्चा की, ख्याल में? तो इनको जानने से कुछ लाभ तो होता होगा कि नहीं होता होगा? तो पर्यायों की स्वतंत्रता का ज्ञान हो जाता है। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। वर्तमान पर्याय का भूतकाल के पर्याय के साथ कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वर्तमान पर्याय तो अभी उत्पन्न हुई है, उसका भूतकाल के पर्याय में अभाव था, और वर्तमान काल की पर्याय का भविष्य काल की पर्याय में भी अभाव है। यानी हमारी पूर्व पर्याय ऐसी थी इसलिए ये वर्तमान पर्याय हुई, ऐसा कोई कहता है तो ये बात तो ठीक नहीं है। इस पर अभी चर्चा चलेगी बहुत। देखो, हम इसको पढ़ेंगे। एक ही द्रव्य की प्रत्येक पर्याय का उसी द्रव्य की अन्य सभी पर्यायों में अभाव है। यहाँ एक ही द्रव्य के एक एक पर्याय का अन्य पर्यायों में हम अभाव है, ये बात सिद्ध कर रहे हैं। अन्य अन्य द्रव्यों के पर्यायों के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो बात हम बाद में करेंगे। एक ही द्रव्य में प्रत्येक समय में एक एक पर्याय होती है। कोई भी एक पर्याय अपने स्व समय में निश्चित है, और वह पर्याय, उस पर्याय का अन्य सभी पर्यायों में, कौन से सभी? भूतकाल की तथा भविष्यकाल की सभी पर्यायों में अभाव है। तो जिसका जहां अभाव है वो कार्य करेगी कि नहीं, कुछ मदद करेगी कि नहीं? वर्तमान पर्याय के कारण भविष्य की पर्याय होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि पर्याय में से पर्याय आती नहीं है। पर्याय तो द्रव्य में से उत्पन्न होती है। हमने कल हमारे सोने का हार तुड़वा कर कंगन बनाए, तो हार में से कंगन हुए के सोने में से हुए? सोने में से हुए ना। हार की अवस्था पलट गई, अभी तो सोने में विलीन हो गई, अब ये नई अवस्था जो हुई है वो सोने में से हुई है। ऐसे ही द्रव्य की जो पर्याय होती है वो पर्याय में से पर्याय नहीं उत्पन्न होती, तो द्रव्य में से ही पर्याय उत्पन्न होती है, और प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र होती है। देखो, आगे हम पढ़ेंगे। यह बात ख्याल में आने पर वस्तु स्वातंत्र यानी वस्तु की स्वतंत्रता सिद्ध होती है। वस्तु यानी द्रव्य तो स्वतंत्र है ही है, उसका प्रत्येक गुण तथा उसकी प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अपने समय पर उत्पन्न होती है, स्वयं के अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है। पूर्व पर्याय के कारण वर्तमान की पर्याय उत्पन्न हुई है ऐसी बात नहीं है। वर्तमान पर्याय का अन्य पर्यायों में अभाव है तो वह उसमें हेर फेर करे, उसे मिटा दे या जल्दी ला दे, कैसे संभव है? तो भूत और भविष्य की चिंता छोड़कर हम वर्तमान में अपना कार्य करेंगे तो आकुलता कम होगी ही। ये तो हमने कल बात देखी थी कि जिसने पहले बहुत पाप किए हैं तो उसको बहुत दुख होता है, अरे रे मैंने इतना जीवन खो दिया, ये जो जिनवानी जो है मुझे मौका था, अवसर था, फिर भी मैंने सुनी नहीं, उसको गौर नहीं किया, उस पर पढ़ाई नहीं की, और अभी मेरी उम्र हो गई, अभी क्या करे क्या करे, हाय 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 हाय, तो उससे उसका कल्याण होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए करते तो भूतकाल जो है वर्तमान पर्याय का, भूतकाल के पर्याय में अभाव है, अभी जो वर्तमान पर्याय है उसमें तू अपना निर्णय कर सकता है। और जो मिथ्यात्व वर्तमान में, जिसके मिथ्यात्व है, देखो हम मिथ्यात्व की बात छोड़ देते हैं, वर्तमान में जो रोगी है तो भविष्यकाल में भी रोगी रहेगा ना, उसका रोग मिटकर वो निरोगी होगा। वर्तमान में संसारी है तो मुक्त होगा, वर्तमान में गरीब है तो गरीब ही रहेगा ना, क्यों जरूरी है कि उसको गरीबी रहना, तो उसकी गरीबी मिटकर वो अमीर भी हो सकता है। तो ये जो पर्याय जो है वो वर्तमान की ओर हमें देखना है, वर्तमान पर्याय में कार्य हो रहा है और हम उसी की ओर देखेंगे या उस पर्याय को हम सही लगा देंगे तो हमें जो इच्छित कार्य है वो वर्तमान में ही होने वाला है। देखो वर्तमान में मिथ्यात्व इसलिए भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस वर्तमान मिथ्यात्व पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव है, प्रध्वंसा भाव है। यह मिथ्यात्व भी एक समय का है, हमने तो सुना है मिथ्यात्व अनादि का है और यहां तो लिखा है मिथ्यात्व एक समय का है, सही क्या है बोलो, मिथ्यात्व अनादि का है कि एक समय का है? हाँ बोलो बेटा आप, हाँ बोलो, हाँ क्या कहते हैं, अनादिकालीन है और यहां लिखा है एक समय का है, तो कौन सा सही है? हाँ देखो पर्याय जो है ना मिथ्यात्व की भी क्यों ना हो, एक एक समय की होती है, प्रत्येक समय में मिथ्यात्व 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 कब से आया है, अनादिकाल से, तो प्रवाह रूप से अनादिका है तब हम उसको कहेंगे अनादिका। जैसे हमने केवल ज्ञान के बारे में देखा था, केवल ज्ञान कितने समय का है, एक समय का, एक 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 समय अभी कब तक चलता रहेगा ऐसा ही परिणमन, अनंत काल तक, तो उसको कहेंगे वो सादि अनंत है, उसको आदि है, शुरुआत हुई है और अभी अनंत काल तक वो तो नहीं मिटेगा, तो उसको कहेंगे वो अनंत काल का है। ऐसे ही मिथ्यात्व कब से चला रहा है, अनादिकाल से, परंतु उसकी प्रत्येक पर्याय मिथ्यात्व 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 ऐसी स्वतंत्र हो रही है। यह मिथ्यात्व भी एक समय का है और एक एक समय करके अनादि से चला रहा है, इसलिए जरूरी नहीं कि अनंत काल तक रहेगा। कारण कार्य व्यवस्था में कार्य कब होगा इस बात का इससे पता चलता है, अभी इसी समय कार्य करना है, भविष्य के वादे मत करना। जो जीव भविष्य में कार्य करूंगा कहता है उसका भविष्य हमेशा भविष्य में ही रहता है। स्कूल में क्या होता था, स्कूल का नए वर्ष का पहला दिन होता था तो हम बहुत मन में निर्णय कर लेते थे, नहीं इस साल तो शुरुआत से ही हम अभ्यास करेंगे। आप भी करते हैं ना, आप अभ्यास भी करते होगे, हम तो निर्णय ही करते थे केवल, परंतु वो तो आखिर के एक महीने तक तो हम भूल ही जाते थे, फिर जब परीक्षा जल्दी आती थी तो फिर हम अभ्यास करते थे। यह कार्य मैं आज नहीं कल करूंगा कहने वाले का कल कभी उगता ही नहीं। देखो क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन तो कार्य हमें प्रकट करना है, तो हम क्या कहते हैं, हमें तो सम्यक दर्शन प्रकट करना है, हमें तो ये सारे शास्त्र स्वाध्याय करना है, परंतु अभी क्या है, हमारे बच्चे छोटे हैं, उनको जरा बड़े करेंगे, स्कूल में जाएंगे, हाँ थोड़ा स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम ये कार्य करेंगे। जिसके बड़े बच्चे होते हैं, अभी तो लड़की की शादी करनी है, थोड़े उसको ठिकाने लगे, लड़के को ठिकाने लगे, वो बराबर कमाए तो हम करेंगे अभ्यास करेंगे। अभी तो हमारी बहू आती ही होगी, बहू आने पर तो हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे, तो जो बहुएं लाते हैं उनको पता है कितनी निश्चिंतता आती है, क्यों है? हमें तो पता नहीं क्या करें। देखो अभी तो मुझे बच्चों को बड़ा करना है, अभी तो व्यापार धंधा करना है, अभी तो संसार के मजे लूट लूं, बुढ़ापे में यह करना ही है, अभी तो समाज का कार्य कर लूं, अभी मैं अन्य लोगों को जिनवानी पढ़ा लूं, ये हमारे लिए हो क्या कहते हैं, अभी अन्यों को जिनवानी पढ़ा लूं, इस तरह अन्य अन्य कार्य करना चाहता है। मैं अभी इसी समय निराकुल सुख प्राप्त करूं, धर्म यानी मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन प्रकट करूंगा, ऐसा कोई नहीं कहता। क्योंकि हमें अन्य अन्य विषयों की अधिकता महत्ता बनी रहती है। हम आत्मा की महिमा सुनते हैं और सुनकर क्या करते हैं, औरों को सुनाते हैं। कुछ बीच में एक कड़ी रह जाती है, कौन सी? जिस आत्मा की महिमा हमने सुनी है वह आत्मा मैं हूं और मुझे अपना अनुभव करना था, वो तो भूल गए। क्या कहा? हमने सुना और सुनाया। तो सुनने वालों की और सुनाने वालों की फौज तैयार हो गई, प्रचार प्रसार में हम बहुत अच्छे तरह से जुड़ गए और लोगों ने भी हमारे वक्तव्य को सुनकर अभिनंदन पत्र बहाल कर दिए, तो हम तो अपने को बड़ा मानने लगे और इसी में अपना मनुष्य भवन, एक मनुष्य भव खो दिया। किसने? जिसने आत्मा की अनुभूति नहीं प्राप्त की तब। हाँ, क्योंकि ये इसके बीच में आत्मानुभव की प्राप्ति हो जाए तो ये कुछ प्रवचन करना आदि बंद नहीं हो जाएगा। मुनियों ने भी किए ना प्रवचन, मुनियों ने भी शास्त्र लिखे हैं, ये कार्य तो तब भी चलता रहेगा। परंतु अभी तो जिस हम कर्तृत्व बुद्धि से कर रहे हैं वो कर्तृत्व बुद्धि नहीं रहेगी, सहज रूप से वो भी कार्य होता रहेगा। देखो लोग कहते हैं ना, बुढ़ापे में करने का कार्य है पढ़ाई वगैरह, ये कौन से सिद्धांतों की? अभी तो हमें कमाने दो, हमारे ये कमाने धमाने के दिन है अभी। मुझे आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कहता कि अभी हमारे कमाने के दिन है, जाके मैं बुढ़ापे में शादी करूंगा। तो शादी बाल बच्चे वो साइड बाय साइड चलता है कि नहीं? यहाँ व्यापार धंधा भी खूब चलता है और शादी ब्याह भी सब कुछ हो जाते हैं, तो व्यापार धंधा करने के लिए, कमाई करने के लिए कोई रोक नहीं यहाँ पर, वो भी चलता रहे और अपना स्वाध्याय भी चलता रहे, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? बिल्कुल, अगर स्वाध्याय सही हो जाए, तत्व निर्णय हो जाए, तत्व चिंतन हो जाए, तो व्यापार धंधा करते हुए भी वो तत्वों की चिंतन हो चलते रहेंगे। तत्व चिंतन करने के लिए एक जगह बैठना है, ऐसा आंखें बंद करना है और वो बस, ये ऐसे थोड़ी होते हैं। होते हुए कार्यों में देखो, ये कारण कार्य की हम जब आगे बढ़ेगी बात, जो कार्य सभी होते हैं, होते हुए कार्यों में हमें उसके कारण का निर्णय करना है। क्या होते हुए कार्यों में? हम जैसे रोटी बना रहे हैं, तो रोटी बनने का जो कार्य हो रहा है वो किस द्रव्य की पर्याय है, वो कहाँ हो रही है, उसका कर्ता कौन है, उसका कारण कौन है, और हमने अभी तक किस, हमने उसको अपना कार्य माना था, ये मैं करूँ तो होता है ऐसा माना था। तो ये तत्व विचार करने के लिए छूट है कि नहीं रोटी बनाते समय? क्या हम रोटी नहीं बना सकते तो आज से नहीं बनाएंगे? क्योंकि शास्त्र में लिखा है बाई रोटी नहीं बना सकती। क्यों? अभी यह प्रवचन हम कर रहे हैं, ये जो बोलने की बात चल रही है, भाषा वर्गना का कार्य चल रहा है, क्या हम इसको अपने से भिन्न नहीं जान सकते? अरे ये तो जो वाणी है वो भाषा वर्गना का कार्य है, ये जो शरीर के जहाँ जो हाव भाव हो रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, वो तो शरीर का कार्य है, और यहाँ समझाने का राग है वो तो राग भाव है, वो विभाव है, और मैं उससे भिन्न हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, क्या ये विचार नहीं चल सकते? होते हुए कार्य में हम किसके करता है इसको हमें निर्णय करना है। मेरा सद्भाव कहाँ है, मेरा अभाव कहाँ है, जहाँ मेरा अभाव है वहाँ का कार्य मैं नहीं कर सकता, ये हमें निर्णय करना है। इसीलिए यहाँ हमें अभाव की चर्चा हम कर रहे हैं। ख्याल में आई ना बात कि जहाँ जिसका अभाव है वहाँ का वो कार्य कर ही नहीं सकता है। देखेंगे अभी हम ये आगे का जो प्रश्न है वो भी बहुत समाज में इसकी चर्चा बहुत होती है, इसलिए ये पैराग्राफ भी पढ़ेंगे आगे का, 40 पृष्ठ पर दूसरा पैराग्राफ। कुछ लोग कहते हैं अभी तो हम जिनागम का अभ्यास कर रहे हैं, अभी सम्यक दर्शन नहीं होगा तो भी ये संस्कार तो आगे रहेंगे ना, ये संस्कार तो काम में आएंगे ना, आप क्या कहते हैं? संस्कार काम में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना, जरूर आएंगे। अरे भाई, संस्कार में क्यों संतुष्ट होते हैं? कार्य अर्थात धर्म प्रकट करने की जिद क्यों नहीं रखते? प्रध्वंसा भाव तो भविष्यकालीन पर्याय में अभाव बताता है। अभी हम जो जिनागम का अभ्यास कर रहे हैं, अभी जो ज्ञान हो रहा है, उसी ज्ञान पर्याय, वही ज्ञान पर्याय रहेगी कि नहीं रहेगी? इसका प्रध्वंसा भाव होगा कि नहीं होगा? क्यों? तो आप कहेंगे फिर हम बेकार का क्यों पढ़ रहे हैं, छोड़ देंगे अभी कल से। ये संस्कार क्या होता है? चलने दो ना, हम कहा नहीं कहते। वो कौन से गुण की पर्याय है? संस्कार है क्या? चल रहा है तो सब कह रहे हैं, परंतु वो क्या है किसी को पता नहीं है। संस्कार कौन से गुण की पर्याय है? हाँ दीपक भाई, हाँ ज्ञान गुण की, पता है? नहीं पता, परंतु कहते तो हम हमारे संस्कार चल रहे हैं। अरे वो थोड़ी संस्कार होते हैं, संसार को आप संस्कार कह रहे हैं। देखो ये जो धारणा ज्ञान सुना है ना, किसको कहते धारणा? कौन से ज्ञान का भेद है? मति ज्ञान का। मति ज्ञान के भेद कौन कौन से हैं? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। धारणा किसको कहते हैं? एक बताओ, बोलो। कालांतर में जिसका स्मरण होता है, हाँ। तो ये जो धारणा है ना, धारणा तो कारण है, और कालांतर में जो हर एक ज्ञान की पर्याय में उतने के उतने ज्ञान, हर ज्ञान की पर्याय नई है, स्वतंत्र है। पूर्व पर्याय में जितने वो धारणा के कारण जो ज्ञान वहां हुआ है, वैसा का वैसा ज्ञान आगे की पर्याय में भी चलता है, वही ज्ञान आगे की पर्याय में भी चलता है, वही ज्ञान आगे की पर्याय में भी चलता है। उसको कहते हैं संस्कार, और वो संस्कार का कारण है धारणा। फिर भी हम धारणा को ही संस्कार कह देते, संस्कार को ही धारणा कहने की पद्धति है हमारी, परंतु ये संस्कार ये ज्ञान की पर्याय है। तो जिस ज्ञान की पर्याय में ये धारा चलेगी, फिर भी प्रत्येक स्वतंत्र है पर्याय। अब जिस ज्ञान की पर्याय में धारा, हर ज्ञान की पर्याय में चल रही, मान लेते हैं कि पूर्व भव में उसने देशना सुनी है और वो उसके अभी ज्ञान की पर्याय वैसे 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 हो रही है। अब जो जीव वहां जाकर सम्यक तो प्राप्त करेगा, उसके लिए हम कहेंगे इसके संस्कार काम में आए, ख्याल में आए ना बात? और जो नहीं करेगा तो नहीं आएगा, तो संस्कार से ही काम होगा ना। अरे जो काम अभी हो सकता है वो संस्कार के खाते क्यों डालते हो? क्या गारंटी है इसके संस्कार चलेंगे? अभी जो बातें हम जान रहे हैं, अभी जो निर्णय करना जितना आसान है, क्या संस्कार के बलबूते पर उतना निर्णय कर सकते हैं हम? अभी आपने इतने जिनवानी पढ़े, इतने अच्छे संयोग मिले, आपके इतना पुण्य बन गया कि देव में चले गए आप। अभी तो हमारे परिणाम है कि चलो जाओ जिनवानी सुनो, उतने भी परिणाम बहुतों के नहीं है, क्योंकि संयोग छोड़कर, टीवी छोड़कर आने का मन नहीं होता है। तो देव में चले जाएंगे, वहां तो इंद्रियों के इतने विपुल भोग है और भोगने के भाव भी है, तो सारी अनुकूलता छोड़कर जाएगा कोई भगवान के समोचरण में वाणी सुनने को? यहां तो बहाने बनाता है, मैं देव में जाऊंगा, वहां से समोचरण में जाऊंगा, वहां तो जिनवाणी सुनूंगा, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करूंगा। क्यों? अभी वर्तमान में अपने जो परिणाम है, भविष्य काल में वही परिणामों की गारंटी है क्या? आप करोगे तो होगा, हमारे कहने से थोड़ा ही होने वाला है। हम तो कहेंगे आज ही काम होगा आपका। सोचने से नहीं होता, क्योंकि सोचना और इच्छा ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, और चारित्र गुण की विभाव पर्याय करे और ज्ञान गुण का और दर्शन गुण का कार्य हो जाए, ऐसी बात नहीं हो सकती। समझ में आता है? तत्व निर्णय, तत्व चिंतन और अपनी आत्मा की अपूर्व महिमा आए बिना ये कार्य नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं बाहर अपनी रुचि रस पड़ा है, उसमें अपने उपयोग वहीं भटकता है, तो इस कारण ये कार्य नहीं हो रहा है। तो यहां देखो, तो ये मिथ्यात्व के संस्कार कब से है? अभी हमने देखा था ना, अनादि। और ज्ञान के संस्कार अभी हमने दो चार साल में यहां डाले, क्यों? तो कौन सा संस्कार किसका काम आएगा? मिथ्यात्व के संस्कार अनादि के हैं, और हम एक बहु में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया है तो हमारे संस्कार से काम चल जाएगा, इसके भरोसे मत रहना कहते हैं। और परिणामों की भी कोई गारंटी नहीं है, कौन से जीव के परिणाम कैसे पलट जाएंगे। देखो शास्त्र में तो कर्णान योग में तो ऐसे कथन आते हैं कि कितने ही जीव की सम्यक तो प्राप्त करते हैं, मुनि दशा धारण करते हैं, फिर भी परिणाम ऐसे पलट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, मुनि अवस्था छूटकर मिथ्यात्व में चला जाता है जीव, नरक में निगोद में तक चला जाता है। भावलिंगी संतों की ये दशा है तो उनके मालूम नहीं तो परिणाम सुधारना चाहिए। बिचारे वो क्या करे हम उनको बिचारे कह रहे हैं। ये परिणामों की ऐसी कोई विचित्रता है तब तो कर्मबद्ध याद आ जाता है ये कर्मबद्ध का सही निर्णय नहीं है। क्रमबद्ध का सही निर्णय तो सर्वज्ञ का, क्रमबद्ध का और सर्वज्ञ का निर्णय हो जाए, आत्मा की अनुभूति हो जाए, तभी हम कहेंगे इसका क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय सच्चा है। नहीं तो अन्य मति क्या कहते हैं, जैसा ईश्वर की इच्छा है वैसा होता है, और हम क्या कहते हैं, क्या करें क्रमबद्ध है वैसा होता है, एक ही बात है, एक समान है। देखो हम आगे पढ़ेंगे। वर्तमान पर्याय न रहे परंतु संस्कार रहे, कैसी विचित्रता, क्या कहते हैं? वर्तमान पर्याय का तो अभाव हो जाएगा, प्रध्वंसा भाव है ना, और संस्कार मात्र रहेंगे, क्यों उसका अभाव नहीं होने वाला? ये हमें तो निर्णय करना है, वो संस्कार होते हैं कि नहीं होते हैं। वैसा उपदेश में भी जनवाणी में लिखा है, ये पूर्व संस्कार के कारण हो गया, वो अपेक्षा सहित वहां बात करेंगे, परंतु फिर भी हर पर्याय स्वतंत्र है ये पहले निश्चित करना है। नहीं है हर पर्याय, हाँ उसमें जितना ज्ञान है उतना ही ज्ञान इसमें हो सकता है, हो सकता है की बात है, गारंटी नहीं है उसकी, क्योंकि हर पर्याय नहीं नहीं है। भविष्य में मुझे मोक्ष पर्याय प्रकट करनी है करके पर्याय का लक्ष्य करने से भी कार्य प्रकट नहीं होगा। मुझे समय दर्शन प्राप्त करना है, समय दर्शन प्राप्त करना है, किसका लक्ष्य है? पर्याय का। और हमें लक्ष्य किसका करना है? शुद्धात्मा का। अभी मैं मोक्ष की इच्छा तो कर लूं, फिर भविष्य में मोक्ष प्रकट करूंगा, अभी समय दर्शन की इच्छा तो कर लूं, फिर भविष्य में समय दर्शन प्रकट होगा, यह मान्यता गलत है। वर्तमान में तो इच्छा रूपी चारित्र गुण की विभाव पर्याय करना चाहता है, करता है, क्या करता है? इच्छा करता है ना करने की, और उसके कारण भविष्य में स्वभाव रूप शुद्ध पर्याय प्रकट होगी मानता है। विभाव पर्याय करूं और शुद्ध पर्याय प्रकट होगी, जैसा आप कारण दो वैसा कार्य होगा। हम कारण तो वहां वैसा नहीं कर रहे हैं और कार्य मात्र चाहते हैं, ये कैसे होगा? नहीं हो सकता। बातें तो हम समय दर्शन की और मोक्ष की करते हैं, परंतु वर्तमान में कार्य क्या कर रहे हैं इसकी ओर कोई देखता ही नहीं। शुभाशुभ भाव रूप कार्य करके शुद्ध भाव रूप कार्य चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अभी शुभाशुभ भाव कर रहे हैं और चाहते हैं शुद्ध भाव प्रकट हो जाए। कार्य हम शुद्ध भाव का चाहते हैं और उसके लिए कारण क्या करें? शुभाशुभ भाव। पर्याय में से तो पर्याय आती नहीं है, पर्याय विशेष है, वह सामान्य में से आती। इसका अर्थ समझ में आता है? गुण में से कार्य होता है, पर्याय आती है। द्रव्य में से कहो या गुण में से कहो, उसको हमने सामान्य कहा, तो सामान्य में से ही ये विशेष की उत्पत्ति होती है। सामान्य और विशेष का अविना भाव होता है। ये अविना भाव क्या होता है? जो एक दूसरे के बिना नहीं होते, जहां एक है वहां दूसरा होता ही है, जहां सामान्य है वहां विशेष होगा ही, जहां विशेष है वहां सामान्य होगा ही, उसको क्या कहेंगे? अविना भाव। विशेष बदलते रहते हैं, यानी पर्याय बदलती रहती है, और सामान्य सदाकाल एक सा रहता है। ज्ञान गुण ज्ञान गुण ज्ञान गुण ज्ञान गुण सदैव एक सा है, और उसके जो विशेष है कौन से? मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, ये जो पर्याय है मति ज्ञान में भी हर समय अलग अलग पर्याय हो रही है, वो बदलते रहते, विशेष बदलता रहता है और सामान्य एक सा रहता है, एक समान, उसको एक रूप कहा है, एक सदृश परिणाम कहा है। सामान्य तो त्रिकाल, तीनों काल, क्योंकि सामान्य जो है वो कोई बदलता ही नहीं ना, तो सामान्य कैसा है, त्रिकाल रहने वाला है, तीनों काल में विद्यमान है। अभेद है, सामान्य हम उसको कहते हैं जिसमें कोई भेद नहीं, हम करते भेद हो जाए तो उसको हम विशेष कहेंगे। तो हो गया सामान्य, अभेद, नित्य कायम रहने वाला द्रव्य स्वभाव है जो शुद्ध है। ये सामान्य को ही शुद्ध कहा है, क्या कहा, भेद करना ये अशुद्धता हो गई। समय सार में शुद्धने का उपदेश दिया है ना, शुद्धने के अवलंबन से सम्य दर्शन हो गया, हो जाएगा। ये शुद्ध क्या होता है, हाँ? शुद्धने किसको कहना, जहां भेद किए बिना सामान्य, ये जो हम त्रिकाल अभेद एक रूप जो कह रहे हैं, द्रव्य स्वभाव अभेद, जहां कोई भेद नहीं करेंगे, उस सामान्य की जहां दृष्टि है तो उसी को शुद्ध कहते हैं, और उसको कहेंगे शुद्ध का अवलंबन लेना, उसी को कहेंगे शुद्ध की दृष्टि करना। पर्याय जब इस द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करती है, उसी में अपनत्व करती है, करने धरने का कार्य पर्याय में होता है। क्या कहा, सामान्य तो सामान्य है और सामान्य को हमने शुद्ध कहा, तो पर्याय शुद्ध होगी क्या अशुद्ध होगी, उसको हम अशुद्ध ही कहेंगे। क्या कहा, सामान्य को शुद्ध कहा तो विशेष को क्या कहेंगे, विशेषण हमने भेद कर दिए तो उसको क्या कहेंगे, जो शुद्ध नहीं उसको क्या कहेंगे, अशुद्ध कहेंगे। हाँ, तो पर्याय जब इस शुद्ध का यानी सामान्य का लक्ष्य करती है, उसमें अपनत्व करती, अपनत्व यानी यही मैं हूं ऐसा स्वीकार करती है, उसी में अभेद एकाकार अनुभव करती है, तब उस रूप शुद्ध हो जाती है। पर्याय में अनंत गुणों का वेदन अर्थात अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती। अभी हमने देखा ना, सम्यक दर्शन होता है, यानी क्या है, उस पर्याय में किसका स्वीकार किया, जो सामान्य है वो सामान्य ही मैं हूं ऐसा वहां स्वीकार हुआ, स्वभाव पर्याय प्रकट होती है। अभी हम आगे ये जो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव देखे हैं, उसको जानने से क्या फायदा होता है क्या नुकसान होता है, इसकी चर्चा करते हुए यह कहते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे तो क्या दोष होगा, तो वो दोषों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। यहाँ लिखा है देखो 41 पृष्ठ पर, हमने कल देखा भी था इसका, प्राग भाव नहीं मानेंगे तो क्या होगा, यानी वर्तमान पर्याय का पूर्व का पर्याय में जो अभाव हमने कहा था वो नहीं होगा तो क्या होगा, उसका सद्भाव मानना पड़ेगा। तो एक पूर्व पर्याय की पर्याय में सद्भाव होगा तो क्या होगा, उसके भी पूर्व पर्याय में, उसके भी पूर्व पर्याय में कब तक चला जाएगा, अनादिकाल तक। तो प्रागभाव नहीं मानेंगे तो कार्य अनादिका ठहरेगा। हमने देखा ही था कि पर्याय ने कार्य प्रत्येक समय में नया नया उत्पन्न होता है और पूर्व पर्याय का व्यय हो जाता है। इस समय का कार्य भूतकाल में नहीं है, ये प्रागभाव की बात करें ना, भविष्य में भी नहीं है, परंतु अभी हम प्रागभाव की चर्चा करें। वर्तमान का जो कार्य है वो वर्तमान में है, भूतकाल में नहीं है, भविष्यकाल में भी नहीं है। वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव है। यदि इस अभाव को हम नहीं मानेंगे और वर्तमान पर्याय का उसके पहले वाली एक पर्याय में भी सद्भाव मानेंगे, केवल एक पूर्व पर्याय में सद्भाव मानेंगे, तो फिर उसके भी और एक पूर्व पर्याय में चला जा, तो उसका सद्भाव और पूर्व पर्याय में चला जा, तो इस तरह से कार्य अनादि का ठहरेगा। देखो नीचे के दो लाइन पढ़ेंगे, फिर से ध्यान देना, यहां कार्य को यानी पर्याय को क्षणिक यानी एक समय का कह रहे हैं, द्रव्य को नहीं। कल भी हमने देखा था, द्रव्य का अभाव नहीं है, ये वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है। वर्तमान के द्रव्य का अगर पूर्व पर्याय में अभाव मानेंगे तो द्रव्य ही क्षणिक ठहरेगा, तो ये तो बौद्ध मति की मान्यता हो जाएगी। ख्याल में आता है, यह द्रव्य को क्षणिक नहीं कह रहे हैं, यहाँ तो वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव कह रहे हैं। ये तो हो गई प्रागभाव की बात। अब प्रध्वंसा भाव नहीं मानेंगे तो कार्य अनंत काल तक चलता रहेगा, ऐसा मानना पड़ेगा। यानी वो वर्तमान की जो मिथ्यात्व रूप अवस्था है वो बाद में भी सम्यक तो होने पर भी हो जाएगी ना। सम्यक तो भी है और मिथ्यात्व भी है, नहीं होगा ही नहीं। फिर मिथ्यात्व 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 ही चलता रहेगा, उसका कभी अभाव ही नहीं होगा। परंतु वर्तमान एक समय पूर्ता ही कार्य है, एक समय के बाद वो नहीं रहता है, उसका अभाव हो जाता है, व्यय हो जाता है। परंतु वर्तमान की पर्याय वर्तमान में है, भविष्य में नहीं है, तो वर्तमान में ही उसकी हम अस्थि नास्ति कह रहे हैं। ख्याल में आती है? ये तो उदाहरण हमने देखे थे कि रोगी हो तो रोगी रहेगा, मिथ्यात्व मिथ्यात्व रहेगा, जो बालक है बालक ही रहेगा, बूढ़ा बूढ़ा ही रहेगा। तुम पूछोगी 42 पृष्ठ, फिर इतना सारा पढ़ने से क्या फायदा? ये हमारा आप सबका प्रश्न है। यदि यह ज्ञान की पर्याय भविष्य में नहीं रहेगी, इस ज्ञान का भी लोप हो जाएगा, तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। अच्छा रास्ता बता दिया आपने, पढ़ने से क्या फायदा। कभी कभी ऐसे पूछते हैं ना, अभी ये तो शास्त्र की बात अलग है, तो क्या हम मर जाएंगे तो फिर आगामी भूमि में फिर ABCD पढ़नी पड़ेगी शुरू से? हाँ पढ़नी पड़ेगी। वाह खूब। प्रध्वंसा भाव का यही सूत्र अन्य सब जगह क्यों नहीं लगाती? इसका अर्थ समझते हो? जब पैसा कमाने जाता है कोई और बहुत अच्छी आमदनी चलती है, तो कभी ऐसा विचार नहीं आता है। यहाँ तो कहते ये ज्ञान के पर्याय भी आगे के समय में नहीं रहेगी, तो ये धन भी आगे के पर्याय में नहीं आने वाला है, ऐसा कोई नहीं सोचता। ये तो अपने पर्याय में भी नहीं है, इसका तो हमारे साथ तो संबंध ही है, केवल संयोग ही है। क्यों? तभी विचार नहीं आता है इतना धन कमाने से क्या फायदा है, वो तो हमारे साथ, अरे इस भव में भी उसका साथ पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है, आगामी भव में तो कोई आने वाला ही नहीं है साथ में। क्यों? कोई लेके गया है यहां से धन संपत्ति घर बार बाल बच्चे सब यही छोड़ना है, फिर भी उसके पीछे कितने घंटे कमाते हम? क्यों भाई, आप लोगों को पता है ज्यादा। देखो यहां कहते हैं केवल शास्त्र ज्ञान पर ही क्यों लगाती है? पर्यायों की क्षणिकता का सच्चा भान हो गया हो तो वर्तमान पर्याय को त्रिकाली ध्रुव अपने सामान्य पर न्योछावर कर दो, यह पर्याय मिटेगी, तब आगामी पर्याय वर्तमान रूप हो जाएगी, उसको भी इसी कार्य में जुटा दो। देखो फिर अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। फिर प्रश्न, आप कहेंगे हमने जो कल पढ़ा था वो हमें आज भी याद है, क्योंकि जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं हम उसका उत्तर दे सकते, तो कल की पर्याय आज तक रही कि नहीं रही ज्ञान की? तो भूतकालीन पर्याय नहीं रही परंतु ज्ञान तो रह गया ना, ऐसा प्रश्न है। प्रति समय की ज्ञान की पर्याय उतना जानने रूप कार्य नया नया कर रही है। जैसे हमने केवल ज्ञान के बारे में देखा था, केवल ज्ञान की हर पर्याय में पूरा जो उसका ज्ञान हो रहा है केवल ज्ञान को, वो सभी का सभी ज्ञान हर समय की ज्ञान की पर्याय में फिर से नया 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 हो रहा है। हर समय की पर्याय नहीं है, एक समय के लिए रखती है, फिर दूसरे समय में फिर वो सबको जानने रूप कार्य हो रहा है, तीसरे समय में सबको जानने रूप कार्य और नया हो रहा है, चौथे समय में सबको जानने रूप कार्य और नया हो रहा है। ऐसे ही हमने कल जो जाना था उतना का उतना जानने रूप कार्य हर समय के पर्याय में हो रहा है। सर्वज्ञ के भी प्रति समय नया नया केवल ज्ञान उत्पन्न होता रहता है, पहले जाना हुआ याद आया ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान भी प्रत्येक समय का व्यय होकर नया केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, परंतु वो कभी अल्प ज्ञान रूप नहीं होगा। केवल ज्ञान मिटकर कभी छद्मस्थ रूप दशा फिर नहीं आने वाली, वो तो अभी अनंत काल तक केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान ही रहेगा। अभी नीचे पढ़ते हैं उसके नीचे का पैराग्राफ। आचार्यों को जीवों पर अपार करुणा है, जो जीव भयभीत हो जाते हैं उनसे कहते कि डरो मत, अब तू सारा जान ले तो ये संस्कार भविष्य में भी बने रहेंगे। प्रयोजनवश उसको ये संस्कार की बातें भी करेंगे, परंतु मूल में पर्याय की जो स्वतंत्रता है, निश्चय से जो बात है, वो हमें जानना चाहिए, उसका स्वीकार भी करना चाहिए। फिर ये जो अपेक्षावश जो बात है कि वैसे के वैसे ज्ञान की पर्याय आगे भी चलती रहेगी, तो हम कहेंगे ये इसके संस्कार है, वो आगे चलकर यदि वो अपने आत्मसन्मुख हो जाए, परिणाम तत्व विचार में जो उसने तत्व सीखे है उस तत्व विचार में उपयोग लगाए, आत्मा की अनुभूति करे, तो क्या कहेंगे हम, ये संस्कार काम में आए। हम कहते ना कोई जीव पूर्व संस्कार लेके आया है, ऐसे हम कहते। कांजी स्वामी के आपने प्रवचन सुने हैं और उनके आपको जीवन गाथा भी पता है, पूर्व भव के संस्कार लेके, क्योंकि इस भव में तो कोई, ये तो सानकवासी संप्रदान में जन्मे थे, क्यों वहां दिगंबर ग्रंथ तो पढ़े भी नहीं थे, सारा श्वेतांबरी ग्रंथों का उनका अभ्यास था। जिस समय समय सार हाथ में आया उसको पढ़ा, अरे हम भी हाथ में लेते हैं, कोई पढ़ाता है तो भी नहीं समझते, क्यों होता है ना ऐसा। और उन्होंने स्वयं पढ़ा और उनको उसमें से, अरे ये तो अशरीरी होने का ये शास्त्र है, ऐसे उद्गार निकले उनसे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा और सातवां अधिकार तो हाथ से लिख लिया उन्होंने, तो ये कहां से सारा उन्होंने केवल स्वयं पढ़ा समझा ऐसा ही नहीं, उसको इतना सरल और पीस पीस कर इतना आसान बनाकर हमें पिरस दिया। तो हम क्या कहेंगे, ये पूर्व के संस्कार लेके आए। ख्याल में आती है ना बात, जो उस रूप परिणमित होता है तब उस पर आरोप आता है, यह आरोप उपचार कथन है, परंतु सर्वथा सभी बातें संस्कार के संस्कार से होती है ऐसा नहीं। वो भी जो उनकी ज्ञान की पर्याय है वो स्वतंत्र नई उस समय प्रकट हुई है। हाँ, वो पूर्व में उन्होंने देशना ली थी, फिर हम कहते पूर्व भव की देशना भी काम करते, ये बात अलग है, वहां कहने का प्रयोजन अलग है, और यहां तो हम कोई सिद्धांत सीख रहे हैं, तो हमें उसी लेवल पर उसको स्वीकार करना है। उपदेश की भाषा अलग होती है, व्यवहार की भाषा अलग होती है और सिद्धांतों की भाषा अलग होती है, और अपेक्षावश उसको अलग अलग जगह अलग अलग उसका कथन भी आता है। हमें उसका सही मर्म पहचानना चाहिए। तो कोई है तो कहते हैं अभी क्या करें, अभी इस बुढ़ापे में मैं क्या करूं, मेरा कार्य नहीं, अरे कोई चिंता मत कर, अभी के संस्कार काम आएंगे। ख्याल है, ये उपदेश की भाषा होती है ऐसे। अब तो सारा जान ले तो ये संस्कार भविष्य में भी बने रहेंगे। जो जीव, समय हो गया ना, हाँ अभी रुकेंगे, जो संस्कार में ही जो संतुष्ट होते हैं उसको क्या कहेंगे, अरे इससे संतुष्ट मत हो जा, तू अपना कार्य अभी कर ले। अब हम यहीं रुकना है ना, समय हो गया अपना। बोलो 2400 भगवान की जय।